لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن الإمام صاحب العصر والأمر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي، وعندما كان من خطئي وعمدي عتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك.
مومنین اور مومنات، شرح دعائے افتتاح کے اعتبار سے بیان آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور آج کی شب جو کہ شب جمعہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ماہ رمضان کی شب بھی ہے اور اس کے بعد شب جمعہ بھی ہے جو کہ اس شب کو مزید چار چاند لگا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے خطبہ شعبانیہ میں سماعت فرما لیا ہوگا کہ جو ابتدائے ماہ رمضان کے اندر علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری جانب رحمت، برکت، مغفرت کو لے کر آ رہا ہے. کچھ حرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکان کے اعتبار سے ہوتے ہیں، مکانی حرم جنہیں کہا جاتا ہے. حرم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ احترام والی جگہ، اسے حرم کہا جاتا ہے. تو حرم کی دو قسمیں ہیں، ایک حرم ہوتا ہے مکانی، ایک حرم ہوتا ہے زمانی. حرم مکانی جیسے کہ خانہ کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، بیت المقدس، مولا کائنات علیہ السلام کا روضہ، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، مولا حسین علیہ السلام کا حرم، امامین کاظمین اور امامین عسکریین علیہ السلام کا حرم، یہ حرم ہیں. لیکن مکان کے اعتبار سے ہیں، جگہ کے اعتبار سے ہیں، پلیس کے اعتبار سے ہیں. اور ایک حرم ہوتا ہے جسے حرم زمانی کہا جاتا ہے. ٹائم، جگہ تو ہو گئی، وقت کے اعتبار سے حرم، زمانے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے حرم. حرم مکانی اور حرم زمانی के दरमियान फ़र्क क्या है। हरम ज़मानी एक तो ये कि माह रमज़ान, एक ये शब कदर, एक ये शब बरात, एक ये है शब मबअस, एक है रोज़े विलादत रिसालत माब। इस तरह से ये जितने मुनासिबतें आती हैं, फ़र्क ये है हरम ज़मानी और हरम मकानी के दरमियान कि हरम ही मकानी वो होता है, एहतराम वाली जगह वो होती है कि जिसकी तरफ बढ़कर इंसान कोशिश करता है, और हरम ज़मानी वो होते हैं कि जो चलकर इंसान की तरफ आया करते हैं। इसीलिए वहां पर खुतबे शाबानिया में ये नहीं कहा गया कि तुमने जाना है, बल्कि ये कहा गया कि वो हरम ज़मानी यानी कि वो वक्त यानी कि वो महीना तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से ये रात के जो शबे जुमुआ है, इस रात को परवरदिगार आलम ने हफ्ते की जितनी रातें हैं उनमें चुना है। वैसे तो अल्लाह ने जमीन और आसमान में जितनी भी अपनी मखलूकात और क्रिएशन की टाइप्स अल्लाह ने खल की हैं, उनमें से हर एक सिन्फ के लिए उसके एक फर्द को चुना और उसे उस पूरे सिन्फ का सरदार करार दिया। परवरदिगार आलम ने जमीनों में से एक जमीन को चुना और उस जमीन को तमाम जमीनों का सरदार करार दिया। अब इसके बारे में उलमा बहस करते हैं कि सबसे ऊपर कौन सी जमीन है, क्योंकि दो जमीनें ऐसी हैं कि जिनकी फजीलत और जिनका मकाम इतना बुलंद है कि यह तय करना बहुत मुश्किल है कि जमीन काबा सबसे ज्यादा अफजल है या जमीन करबोबला। और इसी वजह से वो मुफाखरा कि जो छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और बिहार में वसाइल में मुस्तदरक में सफीना में मुस्तदरक के सफीना में इन किताबों के अंदर ये मुफाखरा कन्वर्जेशन बिटवीन द लैंड ऑफ मक्का या लैंड ऑफ काबा और लैंड ऑफ करबला, इन दोनों के दरमियान एक मुफाखरा है। मुफाखरा यानी कि अपने आप पर एक दूसरे फ़ख्र मुबाहत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं वो हूं कि जिसकी ये फजीलत है। फिर जमीन करबला कहती है कि मैं वो हूं कि जिसकी ये फजीलत है, और बिल आखिर उसका नतीजा क्या है उसके लिए जरूर पढ़ें वो मुफाखरा। लेकिन जमीनों में से एक जमीन को तमाम जमीनों का सरदार करार दिया, आसमानों को जब अल्लाह ने खल किया तो अर्श को चुना तमाम आसमानों पर, सातवें आसमान को चुना तमाम आसमानों में से, और वहां पर उस अपना परवरदिगार आलम ने अर्श करार दिया यानी कि सातवें आसमान को उसने तमाम आसमानों पर चुना। परवरदिगार आलम ने जहां पहाड़ खल किए तो पहाड़ों में से वो पहाड़ कि जो अकीक का पहाड़ है कि जो यमन की तरफ है, वादी अकीक जिसे कहा जाता है, अकीक रेंजेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन रेंजेस जो अकीक की हैं, परवरदिगार आलम ने सारी दुनिया के जितने पहाड़ हैं उन तमाम पहाड़ों में से उस पहाड़ को चुनकर तमाम पहाड़ों का सरदार करार दिया। अब यह सिलसिला चलता चला आ रहा है, दिनों में से एक दिन को परवरदिगार आलम ने सरदार करार दिया, हफ्ते के अंदर वो दिन के जिसे अल्लाह ने हफ्तों के दिनों का सरदार बनाया वो है रोज़े जुमा। रात के अल्लाह ने हफ्ते की रातों में से जिसे चुनकर हफ्तों की रातों का सरदार बनाया है वो है शबे जुमा। और अल्लाह ने जब महीनों को खल किया तो महीनों में से एक महीने को चुना है और उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बनाया, और वो महीना है माह रमजान का। और मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह रमजान के पहले दिन खुतबा इरशाद फरमाया था कि जिसके अंदर मौला ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए थे, और मौला ने कहा था अपने खुतबे के अंदर कि अल्लाह ताला ने जैसे माह रमज़ान को तमाम महीनों में महीनों का सरदार बनाया है, वैसे ही हम अहले बैत को परवरदिगार आलम ने तमाम इंसानों में चुनकर इंसानों का सरदार बनाया है, और हम अहले बैत में से पूरी बशरियत पर जिस शख्सियत को परवरदिगार आलम ने सबसे बुलंद मकाम देकर तमाम इंसानों का सरदार बनाया वो है वो शख्सियत खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। लिहाजा अल्लाह ने हर चीज़ जो भी सिन्फ बनाई उसमें से एक को चुना और उसे उसका सरदार बनाया। लिहाजा हम हरम ज़मानी यानी कि माह रमज़ान में हैं, माह रमज़ान की रातों में से जो हफ्ते की ये रात है ये फिर एक और हरम ज़मानी है, यानी कि ये एक ऐसी रात है कि जिसके अंदर दो एहतराम वाले मौके या मुनासबतें कोइंसाइड हो रही हैं, मिल रही हैं, शबे जुमा भी और माह रमज़ान की रातों में से एक रात भी। अब यकीनन इसके जो आमाल हैं वो मफातीहुल जनान के अंदर मौजूद हैं। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा, इकबालुल आमाल में देख लीजिए, मिसबाह कफ़मी में देख लीजिए, सैयद इब्ने ताऊस की और किताबें उसके अंदर देख लीजिए, आमाल आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो रिवायात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इस्तिफादा होता है वो ये है कि जो अमल इस शब का सरदार अमल है वो दो अमल है। एक अमल है ज्यारत आकाब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि ज्यारत वारिसा या ये कि ज्यारत मबसूता, और एक अमल है दुरूद बर मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिम अफजलुल तहियत वस्सना। जितना इंसान के लिए मुमकिन हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, जितना कसरत के साथ इंसान पढ़ सके दुरूद, अपनी जुबान पर इसका विर्द जारी उसारी रख सके। बुजुर्गान ये बयान किया करते हैं, बुजुर्ग मराजी और बुजुर्ग उलमाए किराम, कि जिनकी बड़ी पाकीजा जिंदगियां गुजरी हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम उनका ये कौल है, वो ये कहते हैं कि दुरूद एक ऐसी एंटीबायोटिक है कि जिसके जरिए से इंसान रूह की भी हर बीमारी का इलाज कर सकता है और जिस्म की भी हर बीमारी का इलाज कर सकता है। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिम सलातो व सलाम। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हमारी गुफ्तगू दुआए इफ्तिताह के एतबार से दुरूद के जुमलों पर पहुंचेगी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वलीकल कायमिल मुअम्मल अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, जब उन जुमलों तक हम आएंगे कि जहां पर अहले बैत अतहार पर दुरूद के जुमले हैं, तो फिर वहां पर रुक कर सबसे पहले दुरूद की कुछ फजीलत को आपकी खिदमत में बयान करेंगे और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक दुरूद और दूसरा ज्यारत वारिसा। ज्यारत वारिसा एक ऐसी ज्यारत है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की दो ज्यारतें ऐसी हैं, एक ज्यारत वारिसा एक ज्यारत आशूरा। ज्यारत आशूरा की फजाइल के एतबार से किसी और दिन सही, आज ज्यारत वारिसा के एतबार से चूंकि मौका भी है, शब भी है और इंशाल्लाह मजलिस के बाद तिलावत भी होगी। अगर कोई शख्स रिस्क के एतबार से परेशान है, जॉब के जाने का खतरा है, रिस्क के एतबार से मुफलिस हो जाने का खतरा है, फकीर और नादार हो जाने का खतरा है, खतरा है अभी हुआ नहीं है, ज्यारत वारिसा पढ़ना शुरू करें, सारे खतरे और सारे एहतमाल दूर हो जाएंगे। और वो अफराद के जिनका आजमूदा है ये नुस्खा ज्यारत इमाम हुसैन, उन्होंने खुद बयान किया कि ऐसे अफराद के जो हमारे साथ थे, हमारे कोलीग्स थे, उन बेचारों की जॉब्स एक एक करके चली गई, मगर मैं चूंकि मुदाविम था, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत वारिसा रोज पढ़कर घर से निकलता था, लिहाजा आका हुसैन अलैहिस्सलाम के सनामे मुबारक ने और उनकी ज्यारत ने और उनको सलाम अर्ज करने के अमल ने मुझे हमेशा बचा कर रखा। छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हदीसों के अंदर इसकी ये तासीर बताई है, जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए अगर कोई ऐसा दौर खुदा न खास्ता कभी आ जाए कि जिसमें मोमिनीन की जानें खतरे में आ जाएं, तो वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिसा पढ़कर घर से निकलें। परवरदिगार मौला हुसैन की अमान में उस शख्स को देता है जब तक कि वो पलट कर घर वापस ना आ जाए। एक बात अब वो आप याद कर लीजिएगा जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था समझाने के लिए कि किस तरह से सलाम करना मौला की इमाम की आइमा अथार की तवज्जोहात को अपनी जानब मबजूल करवाने का सबब बनता है। मैं बात को मजीद तुलानी ना करूं, आज की आमाल में जरूर ज्यारत वारिसा और दुरूद और नमाज शब यकीनन इंशाल्लाह तमाम ही मोमिनीन पढ़ेंगे और नमाज जाफर तैयार। कल सूरज के जवाल यानि जोहर के वक्त से पहले पहले का वक्त नमाज जाफर तैयार के एतबार से बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, वक्त की कमी की बिना पर हम बहुत ज़्यादा इस एतबार से बयान नहीं कर पाएंगे। आइए शरह दुआए इफ्तिताह की जानिब। हमने कल यहाँ तक बात को पहुँचाया था कि परवरदिगार आलम ने मुझे इतना माफ़ किया, मेरी इतनी लग्जिशों को उसने दरगुजर कर दिया कि मैं अब हौसला रखता हूं कि उससे कुछ मांग सकूं। सिर्फ उससे मांगने का हौसला नहीं पैदा हुआ बल्कि अब मैं उसकी बारगाह में जाकर उससे वैसा नहीं डर रहा जैसा मैं किसी जालिम बादशाह से डरता हूं। अब यहां पर रुककर मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, जो कहते ना कि अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो, बच्चों को भी कहा जाता है अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना जो है ना, दो तरीका का डर होता है। एक डर वो होता है कि जो जालिम जाबिर बादशाह का डर होता है, एक डर वो होता है जो अपने किसी प्यारे से इंसान का डर होता है। जालिम जाबिर बादशाह से क्या डर होता है कि मैंने जरा सी गलती करनी है और उसने मुझे मार देना है, उसने मुझे कैद कर देना है, उसने मुझे कोड़ों की सजा सुना देनी है। और जब किसी प्यारे से मोहब्बत की वजह से जो डर आता है उसमें क्या असर होता है, उसमें यह असर होता है कि इंसान को डर इस बात का नहीं होता कि वो मुझे कुछ कह देगा कर देगा मेरे साथ, नहीं, डर इस बात का होता है कि मेरे किसी अमल की वजह से वो नाराज ना हो जाए, मेरा कोई अमल उसकी दिलाजारी का सबब ना बन जाए, लिहाजा इंसान खामोश हो जाता है, लिहाजा इंसान अपने अमल को रोक लेता है, लिहाजा इंसान अपने जहन में आई हुई बात को पी जाता है, दबा लेता। यहां परवरदिगार आलम की बारगाह में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि इंसान हर कदम पर डरे कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करूं, यह बात। लेकिन यहां पर परवरदिगार मुझे खुद जरी बना रहे, जरी अलल मासिया नहीं, मासियत पर जरी नहीं बना रहा परवरदिगार, वहां पर तो नाराज हो जाएगा। परवरदिगार जो मुझे जरी बना रहा है ना, वो इस बारे में जरी बना रहा है कि मैं कम से कम इतना तो काबिल रहूं कि उसकी बारगाह में आकर उसी से मांग सकूं। क्या मांग सकूं? गुनाह करने के बाद इतना तो कम से कम रहे कि मैं उसी की बारगाह में आकर उसी से माफी मांगूं और मुझे यह यकीन भी रहे कि वो मुझे माफ करने वाला है। क्या जुमले मौला के, अत अमनी, यानी ये ऐ खुदा तेरा मुझे माफ करना, मेरी खताओं से दरगुजर करना, मेरे जुल्म से सरफे नजर कर लेना, मेरी बुराइयों पर पर्दे डाल देना, मेरे बहुत सारे गुनाह को अपने हिल्म और बुर्दबारी की वजह से छोड़ देना, जानबूझ के और गलती से जो कुछ हुआ उसे तूने सब को छोड़ दिया, माफ कर दिया। इस बारे ने मुझे तमा पैदा की है, मेरे अंदर हस पैदा की है कि मैं तेरी बारगाह में आकर तुझसे वो सवाल करूं कि जो सवाल करने का मैं हकदार नहीं हूं, अपनी हैसियत से बड़ा सवाल करने का परवरदिगार तूने मुझे मौका दे दिया और मुझे शौक दिला दिया। और अब मैं आकर तेरी बारगाह में कैसे खड़ा हुआ हूं? मैं अमन की आलम में खड़ा हुआ हूं, मुझे अब खौफ नहीं है। फसिर तू अदऊ का आमिना व असअलु का मुस्तानिसा ला खाइफा वला वजिला, मेरे मुझ पर कोई कपकपाहट तारी नहीं है, मुझ पर कोई खौफ नहीं है। मुदिल्लन अलैका, पता है क्यों खौफ नहीं है? मुझे पता है कि परवरदिगार बेजा जुल्म नहीं करता। बेजा जुल्म नहीं करता का मतलब ये कि मैं ये सोचूं कि जिस वक्त मैं गुनाह कर रहा था उस वक्त क्या वो मुझे नहीं देख रहा था? देख रहा था। उस वक्त चाहता तो क्या आसमान से बिजली गिरा कर मुझे खत्म नहीं कर सकता था? कर सकता था, नहीं किया। मतलब उसे अजाब करने में जल्दी नहीं है, परवरदिगार आलम को अपने बंदे के ऊपर अजाब करने की कोई जल्दी नहीं है। दो बातें, एक बात तो ये कि अगर अजाब कर देगा तो उसने तो बंदे को तौबा का मौका ही नहीं दिया। तौबा का मौका इंसान के पास आखिरी सांस, आखिरी हिचकी, जो आखिरी जिसे गरगरतुल मौत कहा जाता है, आखिरी मौत की जो हिचकी है ना, वहां तक भी परवरदिगार आलम ने तौबा के दरवाजे को खुला रखा है। हां, इसके माना यह नहीं है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसूल काफी में क्या खूबसूरत हदीस फरमाई है। मौला इमाम मासूम का तो कलाम है ही नूर। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखना, किसी गुनाह को छोटा ना समझना, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सा ऐसा गुनाह है कि जो परवरदिगार आलम को नाराज कर दे और उसकी रहमतों को तुमसे दूर कर दे। तो ताज्जुब उस शख्स से है कि जो ये कहता है कि मैं आज गुनाह करके कल इस्तिग़फ़ार कर लूंगा। मौला ने इस बात को कंडेम किया है, मौला ने इस बात को पसंद नहीं किया है कि इंसान ये कहे कि आज बहुत दिल चाह रहा है, आज मूड हो रहा है, आज मेरा मूड हो रहा है, अब क्या करें, मूड हुआ था सुन लिया गाना, मूड हुआ था ये काम कर लिया, दिल चाह रहा था कर लिया, चलें, ना करें। गलती हो गई, परवरदिगार माफ करने वाला है। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह माफ नहीं करेगा, माफ करेगा, लेकिन ये सोच करके वो माफ कर देगा गुनाह करना, ये बहुत बुरी बात है। ये परवरदिगार आलम की रहमत को चैलेंज करना और उसके इस निजाम को, माफी के निजाम को चैलेंज करने वाली बात है कि इस बात पे मबना रखकर, इस बात पे बुनियाद रखकर के हाँ ये तो माफ कर ही देगा ना अल्लाह, चले मैं गुनाह करता हूं, यानी ये अल्लाह के गुनाह को हमने हल्का समझा, अल्लाह की मासियत को हमने हल्का समझा, इस चीज की बहुत ज्यादा ताकीद है कि इससे इंसान अपने आप को बचाए। ला खाइफन वला वजला, मुदिल्लन अलेका, नाज कर रहा हूं, नाज तेरी बारगाह में आकर इतरा रहा हूं, नाज कर रहा हूं। फीमा कसद तो फी ही इलेक फ इन अब तो अन्नी अतब तो भी जहली इलेक, ए खुदा तेरी रहमत ने मुझे कैसा बिगाड़ दिया है कि अब मैं आकर तेरी बारगाह में नाज करता हूं, और अगर मेरी दुआ कहीं कबूल होने में स्लो हो जाती है, मेरी दुआ की कबूलियत में अगर कहीं पर स्लो और कहीं पर आहिस्तगी आ जाती है, ताखीर हो जाती है, अगर डिले होता है, तो अतब तो भी जहली, मैं अपनी जहल की वजह से बुरा भला कहना शुरू कर देता हूं कि अल्लाह से मैंने, मुझे इतना अरसा हो गया, मैंने एक दुआ मांगी है, आज तक वो दुआ कबूल नहीं हुई। ये हम कहते हैं नहीं कहते हैं, जुमला कहते हैं ना, एक दुआ है मेरी जो मैंने मांगी है वो आज इतना अरसा हो गया कबूल नहीं हो रही। आपकी एक दुआ ये कबूल नहीं हुई ये तो आपको याद है, मगर एक ही दिन में कितनी सैकड़ों दुआएं कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के किसी कोने पे पड़ी हुई होगी जो कबूल हुई उस पर शुक्र अदा नहीं करते। वला अल्लज़ी अबता अन्नी हुआ खैरुल्ली, और ये जो डिले हुआ है ये जो ताखिर हुई है ये मेरी बेहतरी के लिए था, और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं और मैं शिकायतें कर रहा हूं। ले इल्म का भी आकिबत उमूर, इसलिए कि तुझे इल्म है इस बात का कि अगर मैंने इस टाइम पर इसकी दुआ कबूल कर ली तो इसको ये नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसने अपने बंदे को ये दुआ उसकी कबूल नहीं की और वो मुराद उसकी उस वक्त उसको नहीं दी। इसीलिए फलम मरा मौलन करीमन अब्दुल्लईमिन का लिया, मैंने है खुदा तुझ जैसा मौला तुझ जैसा आका नहीं देखा कि जो अपने इस गुलाम पर के जो ऐसी हरकतें करता है कि जो छोटी हरकतें उस पर इतना सब्र करे। हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कल या परसों कि बड़े बड़े जो बॉसेस होते हैं वो एक आध दो तीन गलतियां बस दरगुजर करते हैं, उसके बाद फिर वो रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं और फिर वो फायर कर देते हैं, वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड खराब हो रहा है इतनी गलतियां अगर आप करेंगे तो। यहां परवरदिगार आलम गलतियों पे गलतियां इंसान करता है बर्दाश्त करता है परवरदिगार, और यही मामला चले ये मैं ये जुमला मुकम्मल कर लूं उसके बाद, क्योंकि ये एक जुमला है, ये जो इतने सारे जो जुमले हैं ना ये सब मिलकर एक जुमला है। क्या मांगेंगे मौला वो आखिर में देखिएगा। फलम अरा मौलन करीमन अजबर आरा अला अब्दुल्लईम मिनका अलैया या रब्बे इन्नका तदउनी फउल्ली अनक, ए खुदा तू मुझे अपनी जाने बुलाता रहा और मैं तुझसे भागता रहा। ए खुदा शब जुमा आसमान जमीन के आसमान के ऊपर आकर फरिश्ते बुलाते रहे मैं दूर रहा, ए खुदा तूने माह रमजान की हर रात मुझे बुलाया मैं तेरे करीब नहीं आया। वततहब्बबु इलैया फतअतबग्गज़ु इलैक, और तू मुझसे मोहब्बत करता रहा जबकि मैं तुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जा रहे थे कोहे तूर पर रब्बे ज़ुल जलाल से हम कलाम होने के लिए, तो एक किसान था देहाती है लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है रोज़ कि वो जाते हैं और जानता है कि कलीमुल्लाह हैं। कहा कि ए मूसा आज जाकर अपने खुदा से कहिएगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, जाकर कह दीजिएगा अपने खुदा को। अब हज़रत मूसा ने सुना और हज़रत मूसा चलने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले हैं और पहुँचे हैं कोहे तूर पर, जबान उठी नहीं ये कहते हुए, यानी नकल करना था उस शख्स का कॉल लेकिन कोट भी नहीं कर पाए। सारी बातें हुई, खत्म होने के बाद गुफ्तगू वापस आने लगे, कहा कि ए मूसा मेरे बंदे का पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचाएगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए खुदा किस जबान से किस मुंह से कहूं, आपने तो सुन ही लिया। कहा कि नहीं, मैं बहुत करीम रब हूं, जाकर मेरे उस बंदे को यह जवाब देना मेरा कि ठीक है कि तू मुझसे बहुत नफरत करता है, जितनी तू मुझसे नफरत करता है उतनी ही और उससे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत ही करता हूं। और जब आए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आने के बाद उस किसान को बताया है, रोने लगा, कहने लगा कि ऐ मूसा अपने रब का कलमा मुझे भी पढ़ाइए, मैंने ऐसा करीम रब नहीं देखा कि जो इतना बर्दाश्त वाला हो कि जो नफरत करने वाले से भी मोहब्बत रखे। व ततवद्दु इलैया फला अकबलु मिन, तू मुझसे मवद्दत पर मवद्दत करता रहा मगर मैंने तेरी मवद्दत को कभी कबूल नहीं किया। अन्न लिया ततव्वुल अलैक, और मैंने ऐसे बिहेव किया कि जैसे मैंने तुझ पर कोई एहसान किया है या मेरा कोई हक है तुझ पर। कैसा जुमला है, अन्न लिया ततव्वुल अलैक, ऐसी हरकतें करता हूं कि जैसा तुझ पर मेरा कोई एहसान है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, फलम यमना का ज़ालिका मिन रहमत, इन सारी मेरी बदबख्तियों की बात भी तूने मुझे सजा नहीं दी, तूने नहीं बोला कि यू डोंट डिजर्व माई रहमत, नहीं बोला तूने। तूने कहा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा बंदा है ना, मेरा ही बंदा है ना, मैंने ही इसे खल किया है, ठीक है कितनी ही बदतमीजी कर ले कितनी ही ऐसी बात कर ले, बिल आखिरे मैंने माफ करना है। काश कि इसका 10% भी हम کہ جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر لیں تو یقین جانیے ہماری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ کوئی ایک برائی کر دے تو دو مہینے تک تو گھر میں اسی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اگر کسی نے ایک غلط جملہ بول دیا تو جب وہ ملے گا اسے وہ یاد ضرور دلائیں گے اور اپنے جملے کے اندر اس کا ذکر ضرور لے کر آئیں گے کہ ہاں ہاں وہ آپ نے ایک بار کہا تھا، مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے مجھے، بالکل صحیح۔ یہ چیزیں انسان اپنے دل میں جب رکھ لیتا ہے نا کسی ایک مومن کے لیے تو یہ اس کی روح کو کمزور کرنے کا باعث ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے مومنین کے بغض اور کینہ سے اور نفرتوں سے کہ جیسے آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال کو کلیئر کر دے گا اور صاف کر دے گا۔ فلم یمنا کذالک من الرحمت علی والاحسان علیہ والتفضل علی بجودک وکرمک فرحم عبدک الجاہل۔ یہ ہے وہ جملہ کہ جو مولا نے اتنے سارے جملے کہے ہیں یہ ایک جملہ کہنے کے لیے، فرحم عبدک الجاہل، اے خدا اپنے جاہل غلام اپنے جاہل بندے پر رحم فرما۔ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ اے رحم کرنے والے اپنے عدل سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اگر تو نے عدل سے کام لیا تو پھر میں نہیں بچ سکتا، تیرا فضل ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو میری ایک نیکی کو جوڑے گا پھر میری ایک خطا کو رکھے گا، پھر میری ایک نیکی جوڑے گا میری ایک خطا کو لائے گا۔ میری خطا تو پرفیکٹ ہوگی مگر میری نیکی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوگی، بالآخرے جو بیلنس بنے گا نا اس میں میری نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی اور میری معصیتیں ان کا سکور بڑا ہوگا۔ اے خدا میں تیرے در سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے تیرا رحم چاہیے بس، اور تیرا رحم حاصل کرنے کے لیے میں اس در پر ضرور آؤں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس در پر آ گیا اور وہ واسطہ لے کر میں آیا کبھی تو اس واسطے کو رد نہیں کرتا، تو اپنے حبیب خدا اور ان کے بچوں کے واسطے کو کبھی حد رد نہیں کرتا کہ جنہیں تو نے رحمت اور رحمت کے اپنی رحمت کی مظاہر اور پرچھائیاں اور جھلکیاں بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے تو اپنے بندے کو، ہمیں سمجھ نہ آتا اگر ہمارے پاس حر کی مثال نہ ہوتی۔ اب میں نہیں کہتا کیونکہ میری زبان نہیں اٹھتی حر کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم وہ افراد کے جو حر کے بارے میں زبان درازی کر دیتے ہیں وہ کیسے کہہ دیتے ہیں جو کچھ کہہ دیتے ہیں جناب حر کے خلاف۔ فرزند زہرا نے معاف کر دیا، فرزند زہرا نے اپنی مادر گرامی بنت رسول کا رومال پیشانی پر باندھ دیا، اس کے بعد کس بات کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو اس بات کی سند ملے کہ حر کی معافی قبول ہو گئی۔ اب حر کو کچھ نہ کہیں، جسے جو حسین کے در کا معاف کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی زبان چلانا گستاخی سے کم نہیں ہے۔ تو حر آیا بھی اس شان سے تھا کہ جو ایک مجرم کا انداز ہونا چاہیے اسی انداز سے آیا تھا، اور کس کی بارگاہ میں آیا تھا؟ مولا حسین کی بارگاہ میں آیا تھا کہ جہاں سے کوئی پلٹ کر خالی نہیں جاتا۔ پلایا تھا نا اس وقت بھی کہ جب حر راستہ روکنے آئے تو کہا کہ بات بعد میں ہوگی، علم امامت سے جانتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بات کوئی نہیں ہوئی کہ کس مقصد سے آیا ہے، کہا حر رک جا۔ مولا عباس علیہ السلام سے کہا کہ پانی کے مشکیزے کھول دیے جائیں، سب کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلایا گیا، سپاہیوں کو، سواریوں کو، جو حیوان جانور ہیں سواری جن پر سوار ہو کر وہ سپاہی آئے ہیں انہیں پانی پلایا گیا، اتنا کریم کون ہوگا۔ اور یہ تھا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ، دنیا کی زندگی کا آخری دن اور دنیا کی زندگی کا پہلا دن مولا حسین، عام عالم انوار کی زندگی کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، دنیا کی زندگی مولا حسین علیہ السلام کی، پہلا دن فطرس کو معافی دلوائی ہے۔ کیا خطا تھی فطرس کی جا کر روایتوں میں دیکھیے گا، لیکن آقا حسین علیہ السلام کی کریمی کتنی بلند ہے۔ زندگی کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کروایا، زندگی حیات طیبہ دنیاوی کے آخری دن فرش کے مجرم کو معافی کروایا، معافی دلوائی۔ دنیا کا نظام کیا ہے؟ دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس تھانے کی حدود کے اندر جرم ہوا ہوتا ہے نا، کہ جس حدود کے اندر جرم ہوا ہے، کرائم ہوا ہے، آپ رپورٹ اسی حدود کے تھانے میں لکھوا سکتے ہیں، اس حدود سے باہر جا کر کسی اور پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج نہیں کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے پلٹ کر وہیں جائے کہ جہاں پر اختیارات ہیں، یہاں پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس رپورٹ کو درج کر سکیں۔ आप इसको और सिंप्लीफाई करके पेश करूं आपकी खिदमत में, आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर कभी कहते हैं कि मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दें? आप लाइसेंस ऑफिस जाकर कभी कहते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरा नाइकॉप बना दें? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके जितने इख्तियारात हैं वो अपने इख्तियारात की बाउंड्री के अंदर मुकैद हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब मुझे ये बताइए कि फितरुस अर्श का मुजरिम था, माफी कहां से मिली है? माफी फर्श से मिली है। तो मुझे कहने दीजिए कि फर्श पर भी हुसैन इब्ने अली की इमामत है, अर्श पर भी हुसैन इब्ने अली की इमामत है, और जहां जहां पर परवरदिगार आलम की तौहीद जाएगी वहां वहां तक हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इमामत जाएगी। इस दर से लॉ लगाकर तो देखिए, परवरदिगार आलम ने यह दर रखे हैं इसलिए कि मेरे बंदे दर हुसैन के बहाने मेरे पास आ जाएं। क्या अब ये जितनी भी चीजें, शब जुमा हो, माह रमजान हो, रजब की 15 हो, रजब की 1 हो, रजब की 27 हो, शाबान की 15 हो, मुहर्रम की 10 हो, शब कदर हो, ये जितने भी मौके हैं ये अल्लाह ने अपने दस्तरखान सजाने के बहाने ढूंढ रखे हैं अपने बंदे को अता करने के लिए, बस हमारे यकीन में कमी है। एक मरतबा नादिर शाह मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के हरम में रोज जाता था, उसका आलम ज्यारत करने का क्या था, तारीख पढ़िए आपके होश उड़ जाएंगे कि एक बादशाह अपने रॉयल प्रोटोकॉल से उस मंजिल के ऊपर आ गया था कि पांव के ऊपर चल के नहीं, प्रोटोकॉल के साथ नहीं, सिपाहियों के साथ नहीं, घुटनों पे चल के मौलाए कायनात की ज्यारत के लिए आता था। क्या क्या ऐसा क्या हुआ था वो सब पढ़िए, आपको तारीख में मिलेगा। तो एक मरतबा जब मौला कायनात को सलाम करने के लिए आया तो देखा वो फकीर के जो हर बार बैठा होता था उस दिन भी बैठा हुआ था, लेकिन फिर जब सवाल किया कि मैं तुझे हर बार देखता हूं, जब आता हूं तू यहां बैठा होता है, तुझे ऐसा क्या चाहिए जो अली के दर से अभी तक नहीं मिला? इतनी ऐसी कौन सी बड़ी आदत है जो अली इब्ने अबी तालिब के दर से आज तक नहीं मिली? कहा मुझे आंखें चाहिए, मैं नाबीना हूं। कहा अच्छा, मैं अंदर जा रहा हूं अली को सलाम करने के लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वापस आऊंगा, अगर तेरी आंखें ना आई हुई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बादशाहों का अपना एक मिजाज है, क्या कर सकते हैं। ये कहा, अब जैसे ही उस फकीर ने सुना एक मर्तबा थर थर कांपने लगा, कहा मौला आप बचा लें। क्या पता है क्या कहा, अब मौला मुझे आप ही बचा सकते हैं। जब उसने सारी कश्तियां जला दी और सारी कश्तियां जलाकर जब यह कहा कि अली अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, तो फिर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ थाम लिया उसके साथ के रो रहा है। अब उसकी सारी की सारी तवज्जो जाते मुकद्दस से मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई। हम मुसल्ले पर होते हैं मगर हमारा ध्यान पता नहीं कहां होता है, हम कुरान करीम की तलावत कर रहे होते हैं मगर हम कहीं और घूम फिर रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भी इनहमाक नहीं कह रहा कि अगर वालिदा बुला रही हो तो उनको भी जवाब न दे, नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम हो कि मैं नमाज में खड़े हुए होते हुए अपने आप को अपने रब के सामने खड़ा हुआ सोच सकूं, तसव्वुर कर सकूं। यकीन अपने अंदर पैदा कीजिए, बात आज की हद तक यकीन पर रुक रही है, मुकम्मल नहीं हुई है, कल बात इंशाल्लाह यकीन ही के इस नुक्ते से आगे बढ़ेगी और कुछ और आपकी खिदमत में जुमले पेश करेंगे। फरहम अब्दकल जाहिल, अपने इस जाहिल गुलाम पर रहम फरमा। बस अजीज़ान मोहतरम, शब जुमा भी है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करने की शब भी है। तसव्वुर कीजिए जब हम और आप मरसिया पढ़ते हैं तो क्या बात होती है। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने दादा हुसैन की मुसीबत का मरसिया पढ़ा है और हम और आप आंसुओं से रोते हैं, इमाम ज़माना खून से रोते हैं, आंखों से आंसू नहीं, मौला के खून जारी होता है, और हम मसाइब को याद करके रोते हैं। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मसाइब को अपनी आंखों से देखकर मंजरे करबला आंखों में फिर जाता है मौला के, और फिर मौला गिरिया करते हैं। बस अजीज़ान मोहतरम, शब जुमा है, मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज करना चाहता हूं, एक लकब ऐसा है मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कि जिस लकब से अगर उन्हें पुकारें तो बहुत जल्द मदद के लिए आते हैं, और वो लकब है या अजीज़ ज़हरा अदरकनी, اے زہرا کے بیٹے میری مدد کے لیے آئے، اے زہرا کے دلبند میری مدد کے لیے آئے، اور جناب سیدہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے سامان شفاعت میدان حشر میں کیا لے کر آئیں گی؟ سب کو یہ کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب خاتون جنت آ رہی ہے، خاتون محشر میدان حشر میں ان کی سواری آ رہی ہے، سب کی نگاہیں جھک جائیں گی، بی بی تشریف لے کر آ کر پہلا سوال یہی کریں گی، اے خدا میری امت کی بخشش، میری امت کی سفارش اور شفاعت، تو پروردگار عالم سوال کرے گا، اے میری کنیز فاطمہ تو سامان شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں؟ اپنی ابا کے دامن کو ہٹائیں گی اور اس کے بعد عباس کے کٹے ہوئے دو بازوؤں کو نکال کر فرمائیں گی، کفا لشفاعت امتی یدان المقطوعتان لولدی العباس، بارِ الٰہی میری پوری امت کی شفاعت کے لیے مجھ زہرا کے پاس عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں، اے خدا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ میری امت کو معافی عنایت فرما، ان کی شفاعت فرما۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلبون۔
پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، اے خدا جتنے گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں سب سے درگزر فرما، شب جمعہ کوئی تیری بارگاہ سے خالی جھولی واپس نہ جائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے صدقے میں اس امت محمدیہ کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، پروردگارہ امام کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سوم جی، مرحوم اکبر فاضل دیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤ جی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم صابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی بانیان مجلس کے تمام مرحومین، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندوی والا خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینہ خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، تھورا خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رضا حسین علی بھائی اور علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بی بی، مرحوم اسماعیل بابا، کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء ملت جعفریہ، مراجع کرام اور خاص طور سے وہ مرحومین اور مرحومات کی جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا ہو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتك يا أرحم الراحمين۔